ओम शांति। जी मुरली 17 नवंबर 1994। हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना कैसा है, अनूठा, अतुल, अद्भुत। तो ये परमात्मा प्यार कितना कैसा है, सुहाना, कैसा है, अलौकिक, पारलौकिक, रूहानी, स्पिरिचुअल। परमात्मा प्यार कैसा है, तड़पाने वाला,
विचित्र,
विचित्र। बरस जाता है ये,
बतलाया नहीं जाता।
ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड में प्यार में खो जाते हो तो एक सेकंड अनेक दुख भूल जाते हैं। अगर एक सेकंड में भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो। और संसार के प्यार में एक सेकंड खो जाते हो तो सब सुख भूल जाते हैं,
सब दुख
उजागर होके सारे दुख सामने आ जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो अगर वो भी कम पड़ता है। एक है परमात्मा प्यार, एक है संसार का प्यार। अगर एक सेकंड में प्यार में खो जाते हो परमात्मा प्यार में तो अनेक दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसे अनुभव है ना। तो परमात्मा प्यार में अगर खो जाओ तो सुख की अनुभूति होती है, दुख भूल जाता है। और संसार के प्यार में अगर खो जाओ तो तुरंत दुख की अनुभूति होती है। ऐसा क्या है परमात्मा प्यार में? परमात्मा प्यार आत्मा को भरता है शक्ति से। संसार का प्यार आत्मा को रिक्त करता है शक्तियों से। परमात्मा प्यार ऊंचा उठाता है, संसार का प्यार गिराता है। परमात्मा प्यार में अद्भुत शक्ति है। कोई एक त्याग कराता है परमात्मा प्यार, संसार का प्यार अति स्वार्थ समाया हुआ है उसमें। परमात्मा प्यार एकमात्र ऐसा प्यार है जो निस्वार्थ है। परमात्मा प्यार ऊपर उठाता है, बेहद में ले जाता है, संसार का प्यार नीचे गिराता है। परमात्मा प्यार में राइज इन लव है, उधर फॉल इन लव है। वो गिरते न, फॉल, दे फॉल इन लव ही थी चदर, ऐसा कहते हैं। यहाँ उठना है, वहां गिरना है। प्यार एक ही है, वो जो है वो प्यार है ही नहीं। वो वासनाओं को प्यार की संज्ञा देते। वो प्यार देहिक संबंधों पर आधारित है। यह प्यार देह के संबंधों से ऊपर उठाता है। ट्रू लव है ये, इट हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। ट्रू लव की परिभाषा है सच्चा प्रेम, अर्थात जिसे देह से कोई लेना देना नहीं है। वो जो प्रेम है वो संपूर्ण देह पर आधारित है, देह पर केंद्रीभूत है। देहिक संबंध, देहिक आकर्षण। एक है परमात्मा प्यार, एक है स्त्री और पुरुष का प्यार, बाकी प्यार छोड़ दो, चर्चा केवल इन दो पर है। बाकी छोटे छोटे हैं। भागवत में एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति अगर वस्तुओं से, पदार्थों से, वैभव से अगर आकर्षित है, उससे वो छूट सकता है, परंतु स्त्री और पुरुष से अगर आकर्षित है, स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से अगर आकर्षित है, उस बंधन से छूटना बहुत मुश्किल है। बाकी बंधनों को छोड़ा जा सकता है, परंतु ये बंधन ऐसा है कि इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, इससे मुक्त होना मुश्किल है। तो एक तरफ है परमात्मा प्यार, एक है स्त्री और पुरुष का प्यार। परमात्मा प्यार त्याग पर आधारित है, सच्चा प्यार अर्थात वहां त्याग है। स्त्री और पुरुष ये जो प्यार है, यहाँ त्याग कम है, हो सकता है कोई कोई, परंतु इन जनरल एवरेज औसत अगर देखा जाए तो वहां पर स्वार्थ है, वासनाएं हैं, वो सच्चे वो कांच को ही वहां हीरा समझा जाता है कांच परंतु उसे हीरा माना जाता है। वो जो प्यार है, अगर उस प्यार की पूर्ति नहीं हुई तो वो चिड़चिड़ेपन और क्रोध में बदल जाता है। जो जिससे प्यार करता है, अगर वो उसे नहीं मिला, स्त्री को पुरुष नहीं मिला, पुरुष को स्त्री नहीं मिली, तो वो प्यार तुरंत घृणा में परिवर्तन हो जाता है। इतना घृणा में परिवर्तन हो सकता है कि बदले की भावना भी वहां आ सकती है, बदले की भावना भी इतनी बढ़ सकती है कि वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं, अगर वो उसे प्राप्त नहीं हुआ तो। तो संसारिक प्यार, स्त्री और पुरुष की परिणति, घृणा, बदला, यहां तक जा सकती है। परमात्मा प्यार इन सब बातों से मुक्त है, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये जो प्यार है, इसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है एक दूसरे से। कहते भले कुछ भी हो ऊपर से, परंतु उन्हें चाहिए, दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को वासना की पूर्ति चाहिए एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से सहारा चाहिए। अगर वो सहारा नहीं मिला, अगर वो प्रेम नहीं मिला, तो तुरंत बदले में परिवर्तन हो जाता है, तुरंत उसके विरोध में सब कुछ कर सकती है आत्मा। ये अंतर है, बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। व्यक्ति स्त्री और पुरुष के प्रेम से मुक्त ही नहीं हो पाता जन्म भर, चाहे वो ब्राह्मण बन जाए, अलौकिक संसार में आ जाए, यहां पर नए बंधनों को निर्माण करता है। जो बंधनों की तृप्ति वहां नहीं हुई थी, पूर्ति, वो यहां पूर्ण करना चाहता है, और यहां इस तरह फंसता है कि जिसमें समय, संकल्प, पैसा, ये व्यर्थ जाता है इस प्यार में। लौकिक प्यार ऐसा है, अलौकिक संसार में लौकिक प्यार को निर्माण करना और उसमें संकल्प, समय, धन लगाने के बाद भी आत्मा तृप्त नहीं होती है। इसके लिए इस प्यार से ये प्यार, परमात्मा प्यार, कई गुना बड़ा है, परंतु परमात्मा प्यार के लिए बहुत सारा त्याग चाहिए, परमात्मा प्यार के लिए बहुत ज्ञान भी चाहिए। ऐसे कोई रेयर आत्मा है कि जो परमात्मा प्यार के साथ ही जन्म लिया है जिन्होंने, और जिन्हें संसार से नेचुरल वैराग्य है, संसार बचपन से ही पसंद नहीं है, ऐसी बहुत ही गिनी चुनी आत्माएं हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं, एक सेकंड में भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो। कितना ऊंचा महावाक्य है, एक सेकंड भी अगर इस प्यार में खो जाते हो तो संसार के सारे दुख विलीन हो जाते हैं। परंतु वो प्यार इतना सच्चा हो, झूठा ना हो, दिखावे वाला ना हो, आडंबर ना हो, दंभ ना हो, ऐसा वो प्यार हो, सुख के झूले में झूलने लगते हैं। ऐसे अनुभव है ना, बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। बाबा आत्माओं को देख रहे हैं, साधारण आत्माओं को, परंतु भाग्य कितना श्रेष्ठ है जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। क्यों? गरीबों से ज्यादा प्यार है उसे। कल का ना वो क्या, नहीं नहीं किस लिए फुर्सत नहीं रहती है, खुजाने के लिए भी फुर्सत नहीं है, माता खुजाने की भी फुर्सत नहीं है दुनिया के लोगों को, उनके पास वो नहीं जाता है। वो जाता है किसके पास, जो गरीब है। वो जाता है किसके पास, जिनमें भावनाएं हैं। वो जाता है इनके पास, वो तर्क वितर्क करने वालों के पास से भागता है दूर। जहां विवेक का वर्चस्व है वहां से वो थोड़ा दूर रहता है। वो जाता है उनके पास जहां भावनाएं हैं। वो शबरी का दिखाते हैं रामायण में, कितने सालों से प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है वो। जब राम का जन्म ही नहीं हुआ है तब उसके गुरु ने कहा था कि तू इधर ही रहना, मैं तो जा रहा हूँ। मतंग ऋषि उसके गुरु, वो कहता है कि राम एक दिन आएंगे। वो तब से इंतजार कर रही है उसका, जब राम का जन्म ही नहीं हुआ है अभी। राम का फिर जन्म हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर तब तक वो प्रतिज्ञा प्रतीक्षा ही कर रही है। और सब लोग उस पर हंस रहे हैं, रोज अपनी कुटिया को सजा रही है, फूल बिछा रही है, परंतु उसे विश्वास है कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, और एक दिन आ ही जाता है। तो प्रेम इंतजार कराता है और उसमें आत्मा थकती नहीं है। प्रेम में प्रतीक्षा है, विरह अग्नि में आत्मा जलती है। प्रेम में परमात्मा प्रेम का जो विरह होता है उसमें आत्मा में अतिरिक्त शक्ति भर जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें भरती है। वो कब से इंतजार कर रही है, लोग हंसते नहीं आएगा, किसके लिए तो कर रही है, परंतु उसे पता है वो आएगा और वो एक दिन आता है। वास्तव में उसका ये राजपाट छोड़कर जाना में एक आध्यात्मिक रहस्य है, जो असंख्य आत्माएं उसका इंतजार कर रही है। कहीं केवट उसका इंतजार कर रहा है कि वो आएगा और मेरी नाव में बैठेगा। उसकी प्रतीक्षा है कि भगवान एक दिन आएंगे और मेरी नाव में बैठेंगे। वो निषाद राज दिखाया है, वो भी इंतजार कर रहा है। वो अहिल्या शिला बनकर बैठी है वहां पर, उसे पता है एक दिन आएंगे। राक्षसों का उद्धार, साधु संतों का उद्धार, सबका उद्धार करने के लिए वो आया है। वो कोई एक कार्य करने के लिए नहीं आता है कभी। राम जन्मते हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। कई उद्देश्य है उसके। वो शिला बनकर बैठी हुई है, शापित है, उसे पता है आएगा और वो आता है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। चरण कमल की रज चाहती है, तो परमात्मा प्यार धैर्य है उसमें। संसार का जो प्यार है उसमें धैर्य है ही नहीं। अगर नहीं मिला तो तुरंत परिवर्तन होता है उसका रूप। इंस्टेंट सारा फुलफिलमेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। नहीं हुआ तो बहुत कुछ हो जाता है फिर। यहां कितने सालों तक इंतजार करती है आत्मा। विश्वास है परमात्मा प्यार में, इंतजार है, धैर्य है, विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, और विरह की अग्नि में जलती है आत्मा। और वो विरह उसे और ही शक्तिशाली बनाता है। वो विरह उसे सब कुछ सहन करने में बाध्य करता है, अन्यथा वो आत्मा इतनी शक्तिशाली और इतना सहन नहीं कर सकती। परंतु ये प्रेम ही ऐसा अद्भुत है जो आत्माओं को, गोपियों को दिखाते हैं ना, जिससे प्रेम कर रही है धीरे धीरे उसी के जैसा हो गई वो। उद्धव समझाने आता है उनको कि ये क्या चालू है तुम्हारा, अरे तुम जिससे प्रेम कर रही हो वो कोई मनुष्य थोड़ी है कि जिसके लिए इस तरह से प्रेम किया जाता है, वो तो अवतार है, वो तो ब्रह्म है, ऐसे इस तरह का ब्रह्म ज्ञान देता है उनको। 6 मास रहता है उद्धव उनके पास, उनको समझाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। अंत में नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत करके जाता है कि मेरी हार हो गई क्योंकि ज्ञान समझाने आता है वो। वो जब जमुना किनारे आता है पार करके, उसमें तो अग्नि होती है, ज्ञान की अग्नि होती है, ज्ञान का एक ताप होता है, परंतु यहाँ तो प्रेम की अग्नि जल रही होती है। दिखाया कि उसको गर्मी लगने लगती है जैसे ही वो गोकुल आता है, क्योंकि यहाँ गोपियां तो पागल है कृष्ण प्रेम में, ऐसा दिखाया है। इतना पागल कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो समझती है कि हम ही कृष्ण बन गई है। कृष्ण ध्याति गीति, कृष्ण ध्याति चित्ती, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते 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 वो जैसे कृष्ण जैसी ही बन गई है, उसके समान। प्रेम प्रेमी जैसा बनाता है, जिससे हमें प्रेम है उसे जो चीज पसंद है वो हम करते हैं। ये अगर वो चाहता है, जैसे भरत और राम का भी दिखाते हैं ना, कि राम कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं चलने को तैयार हूं वापस तुम्हारे साथ, परंतु फिर मुझे अपना कर्तव्य जो है मेरा वो तोड़ना पड़ेगा मुझे, वो मुझे उससे मैं वंचित रह जाऊंगा, वो बोझ है मेरे ऊपर, अब तुम बताओ कि मैं जाऊं या रहूं यहाँ। तो उसका प्यार है ना, तो वो त्याग कराता है। संसार का प्यार कभी त्याग नहीं कराता है, ये भी एक खूबी है परमात्मा प्यार में। तो परमात्मा प्यार हमें जो प्रेमी की इच्छा है उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं तो ही प्यार कहेंगे, नहीं तो नहीं। केवल कहना और नारे लगाना उससे नहीं होता है, मेरा बाबा के नारे लगाने से कुछ नहीं होता है, जो उसे चाहिए वो करके दिखाना ही प्यार है, सच्चा प्यार। तो बाबा कह रहे हैं जो अति साधारण है वो उसे प्रिय है, जो गरीब है वो उसे प्रिय है। क्यों गरीब प्रिय है उसे? हाँ, माथे मामला नहीं है, या फिर ऐसा कहे कि साहूकारों के पास वो कम क्यों जाता है, उसके पास फुर्सत नहीं है, उनके पास भावनाएं कम है। गरीबों के पास भावनाएं जाता है, गरीबों के पास चिंताएं कम है, धन ही तो एक माया का रूप है। हाँ, वो मांगते कम है उसके लिए प्यार ज्यादा करता है, बहुत भावनाएं होती है उनमें, पैसे कम है परंतु भावनाएं बहुत है, दिल साफ है उनका और तुरंत परमात्मा की ओर लगा सकते हैं। यहाँ गरीब और साहूकार ये केवल धन की बात नहीं चल रही है, भावनाओं की बात चल रही है। हाँ, वो भावनाएं हैं यहाँ पर, उस धन से इतना संबंध नहीं है गरीब और साहूकार का। कोई गरीब हो सकता है परंतु, कोई साहूकार हो सकता है परंतु फिर भी अगर उसके पास भावनाएं नहीं है तो गरीब ही है। तो बाबा को साधारण आत्माएं पसंद है, जो गरीब है वो पसंद है, जो भावनाओं से परिपूर्ण है वो पसंद है। ना हम बसामि वैकुंठे, एक जगह लिखा है भागवत में कि हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, योगी के हृदय में भी मैं नहीं हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त, मेरा अनन्य भक्त जहाँ अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां हूँ जहाँ मेरा भक्त, मुझे चाहने वाला वह श्रद्धालु अनन्य प्रेम से मेरे गुणगान कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, मैं वहां विद्यमान हूँ, बाकी इनके पास मैं नहीं हूँ। जो बाबा ने कहा है ना, ये मुख का सौदा नहीं है, ये दिल का सौदा है। मुख के केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता है, हृदय से आवाज निकले वो। परमात्म प्रेम की, तो वो आता है, ऐसे ही नहीं आता है। तो बाबा को अति साधारण बच्चे जो है, अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, तो ऐसे साधारण आत्मा ही उसे पसंद है। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। वो तो आ सकता था, अच्छी अच्छी आत्माएं थी उस समय भी थी। हाँ, मतलब उस हिसाब से अच्छी आत्माएं थी, जवान आत्माएं थी, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, ये सब आत्माएं तो वहां थी ना, अवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल में, पर उनमें वो नहीं है। वो साधारण आत्माओं में आता है, जो नामी ग्रामी है उनमें नहीं आता है, बहुत साधारण, उसी के द्वारा उसे अपना कार्य करना है। कोई राजा के तन में, रानी के तन में नहीं आता है, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में भी नहीं आता है, इसमें भी बड़ा राज है। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है, साधारण बच्चों में भावनाएं हैं, और बाप को भावना चाहिए, देहभान वाले नहीं चाहिए उसे। जो भावना वाले हैं वो उसे बहुत प्रिय है। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माएं होनी है, में है। ये जिसको पूछते हैं कि हे तेरे प्रभु के राज्य में कौन आएगा, वो एक छोटे बच्चे को उठाता है और कहता है कि वो जो बच्चे समान है, बच्चे नहीं, बच्चे समान है, वो मेरे प्रभु के राज्य में आएंगे। उसको पूछते हैं, बताओ और तेरे प्रभु के राज्य में कौन आएगा, वो कहता है कि वो जो गरीब है वो मेरे प्रभु के राज्य में आएंगे। दे दैट आर पुअर शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन, दे हु आर लाइक चाइल्ड लाइक शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन, बाकी नहीं। वो दिखाया है, जीसस जा रहा है यीशु, और उसके पीछे एक साहूकार आदमी आ जाता है, कहता है कि मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मैं मुझे तुमको फॉलो करना है। तो बोलते हैं, अच्छा तो एक काम करो, पहले तुम्हारे पास जितना धन है सब गरीबों में बांट दो और फिर मेरे पीछे आओ। तो वो पीछे हट जाता है, कैसे करेगा इतना भारी काम। तब वो वाक्य है कि नॉट जो सुई की नोक से हाथी जा सकता है, एक ऊंट जा सकता है, हाँ कभी हाथी बोला एक जगह ऊंट भी बोला है, परंतु इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रिच मैन टू कम इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। साहूकार के लिए असंभव है स्वर्ग के राज्य में आना। स्वर्ग के राज्य में आना है तो तुम्हारे पास जो भी है सब बांट दो और उसके बाद मेरे पीछे आओ, तो ही मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं। तो बाप को भावना चाहिए, जिसमें जितनी भावनाएं हैं, बाप को बुद्धिमान लोग इतने नहीं चाहिए जितने उसे भावना वाले चाहिए। बुद्धिमान और उनके बाद में तर्क सिद्धांत बहुत मुश्किल है इनको। कल मुझे एक बहन ने फोन किया था, उसने कहा कोई एक सर्जन है, हार्ट के सर्जन, उनका कोर्स कर रही है, तो उसके इतने सारे प्रश्न हैं, तर्क वितर्क है, बहुत अच्छी आत्मा परंतु प्रश्न बहुत है, अभी कैसे उसको समझाए। और वो प्रश्न ऐसे है कि उसके बाबा ने भी इतने स्पष्ट उत्तर नहीं दिए, ऐसे प्रश्न है उसके। और वो ही कोई साधारण आत्मा होती तो ये सब में तो जाती नहीं है, उसे कोई लेना देना ही नहीं है, चक्र 5000 साल का ही क्यों है, उसे ज्यादा उससे लेना देना नहीं, बोल दिया है बस है, भगवान ने कहा है बस, डिवाइन रिविलेशन है, ऊपर से आई है वो फिगर, जो है कुछ भी है, जो जैसे वो भगवान का जो भक्त है, जैसे दिखा है ना हनुमान, हनुमान कहता है मुझे कुछ, हनुमान से पूछता है कोई कि भाई समय क्या चल रहा है, बोलते मुझे कुछ लेना देना नहीं है समय से, मैं केवल राम में मगन हूँ। वो राम हुआ नहीं हुआ, राम भक्त को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी तारीख थी, तिथि थी, इससे उसे लेना देना ही नहीं है, बस उसका प्यार है उससे, बस प्यार है, इसके लिए बाबा बहुत बार कहते हैं ना, केवल इस पे निश्चय, बाप पे निश्चय करा दो बस, बाकी वो आप ही मान लेंगे सारा। एक बड़ा फोटो बस शिव बाबा का रखो, बाकी चित्र कोई काम के नहीं, एक मुरली इस पे है पूरी। तो उस पे निश्चय अगर हो गया तो उसने जो कुछ कहा उस पे भी निश्चय हो जाएगा। परंतु ये उन आत्माओं में जो परमात्मा प्रेम की प्यासी है, भूखी है, पर वो जो तर्क वितर्क से भरे हुए, जिज्ञासा से भरे हुए, उनका बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनको कैसे कन्विंस करें, बहुत सारी बातें नहीं मानेगी। तो हाँ, साक्षात्कार तो फिर बाबा कराएगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। वो भूखा है भावना का, प्रेम का ना। हाँ, उनकी बड़ी तारीफ करता है ना, क्योंकि भावना है। कोई 1 लाख रुपए दे दे और भावना ना हो, बाबा स्वीकार नहीं करते। एक मुरली में था ना, कोई कोई बच्चे बाप से पूछते, बाबा आपको कुछ चाहिए तो बोल देना, हमारे पास धन बहुत है। बाबा कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, जाओ यहाँ से। वाह गरीबी वाह। हाँ बस। किसी ने कहा था कि भाई मैं अभी समर्पित होने को तैयार हूँ, अगर आप मुझे साक्षात्कार करा दो तो। समर्पित तक होने को तैयार हूँ, जैसे कोई जहर दे रहे वो भी पीने को तैयार हूँ। वाक्य कहते कि मैं समर्पित तक होने को तैयार हूँ, अगर मुझे आप साक्षात्कार करा दो तो। जैसे भाई जहर तक पीने को तैयार हूँ, वो वाली बात है। हो सकता हूँ, पर एक साक्षात्कार मुझे चाहिए बस। किसी का भी करा दो चलेगा, आत्मा का करा दो, परमात्मा का करा दो, परमधाम का करा दो, या स्वर्ग का करा दो, कोई भी, अविनाश का भी करा दो, ये 5 में से कोई भी एक साक्षात्कार अगर करा दो तो समर्पित तक, जैसे जहर तक। बाबा कहते साक्षात्कार करना है तो जाओ उधर, मेरे पास मत आओ। तो नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। चलो भावना भी होगी किसी नामी ग्रामी के पास, परंतु समय कहाँ है? इतनी व्यस्त दिनचर्या है तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण है और कितनी श्रेष्ठ, कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। बाबा इनको देख रहे हैं, ऐसे कहते सब साधारण। मनोर इंद्र दादी जब मुरली चलाती थी तो ऐसी कहती थी, ये माता है देखो, ये माता है, ये सामने बैठी है, लगता है क्या इनको देख के भगवान पाया है? देखो इनके चेहरे तो देखो। ऐसी कहती थी ना। ये हाँ, उनको उसमें इस तरह के वाक्य बहुत है, बहुत सारे इस तरह के वाक्य हैं। जो आंख वाले हैं वो अंधे हो जाएंगे और जो अंधे हैं वो आंख वाले हो जाएंगे, ऐसे बहुत कंट्रोवर्शियल इस तरह के स्टेटमेंट्स उसमें आते हैं। तो नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भाग्य का भावना का फल प्राप्त कर रहे। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम में साधारण बनना यह भी भाग्य की निशानी है। साधारण भव। वाह गरीबी वाह, गरीब भव, अच्छा है गरीब बन गए। पैसे नहीं है बहुत, वो पैसों वालों का हाल देखो क्या है। पैसे तो है परंतु आधे पैसे तो बीमारी और डॉक्टर में खर्च होते हैं। एक बीमारी से बाहर निकलते दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी से बाहर निकलते तीसरी बीमारी, और कहते सब करा दो, जो भी जितना कर सकते हैं सब कराओ, सब कराओ, सब नॉर्मल, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है। क्या क्या है तो कुरूप। हाँ वो तो है, जितना कम सौंदर्य उतना ही अच्छा है कलयुग में, कोई आकर्षित तो नहीं होगा। एक बहन तो ऐसे ही अनुभव सुना रही थी कि वो थोड़ी काली है, तो अच्छा ही हुआ बोले मैं काली थी। क्योंकि उसको शादी का चल रहा था, पसंद कोई कर नहीं रहा था, और बीच में ज्ञान मिल गया। तो वाह कुरूपता वाह, अच्छा ही है। ज्यादा सुंदर बनने की भी आवश्यकता नहीं है इधर। इसलिए ड्रामानुसार संगम में साधारण बनना ये भाग्य की निशानी है। इसलिए संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे रहे। कलम मिलिए ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है? छोटी मोटी तो नहीं खींच ली, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य की कलम दे देते हैं। यही परमात्म प्यार है, यह है परमात्म प्यार। तो प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उधर संसार में स्त्री पुरुष एक दूसरे की कामनाएं सारी उम्र भर पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, पर कभी फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। कभी ये लाएंगे कभी वो लाएंगे, गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को, पर संतुष्ट होते हैं क्या? मुश्किल है, नहीं हो पाते संतुष्ट। तो जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण करते थे। सुख शांति तो चाहिए ना, कल की मुरली में था ना, बाप तुमको सुख और शांति दोनों दे देते। तुम्हारी जो कामनाएं थी, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी दो कामनाएं सुख और शांति की बाप आकर पूर्ण करते हैं। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हो तो उसमें सुख मिलता है ना, तो बाप सुख क्या देते, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, फुल स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, वो सागर है, अकूट सागर। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। इसका उत्तर बाबा क्या कहते हैं? ऐसा मत कहना कि दे दो, बाबा कहते हैं दे दिया। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं, दे दो नहीं, दे दिया। मांगो ही नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जन्म हुआ और दे दिया, दे दो नहीं। खाली अपनी अपनी पॉकेट देख लो, उसमें पहले से ही है, पर्स देख लो, माता को बाबा कहते हैं ना। तो दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं। बाप ने दे दिया, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है, कितना सहज मिला। कोई मेहनत की, कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, पिछले जन्म में हुए होंगे, पर यहाँ उससे भी भारी काम है। एक टांग में तो नहीं, पर एक संकल्प की टांग में खड़ा होना, वो बोल दिया होता तो वो भी गए होते। यहाँ उससे भारी काम है, एक संकल्प की टांग पे खड़े हो जाओ, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं हो, आराम से बैठे हो ना, आराम से बैठे हो, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, 90 है नहीं है, ओम शांति भवन 94, ओम शांति भवन, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे ना भाग्य विधाता हमारा है। जो भाग्य बनाने वाला है वो हमें मिल गया। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? जो जब भाग्य विधाता ही आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? तो क्या सुना? परमात्मा प्यार कैसा है? सुखदाई है, प्रेममयी है, आनंद से भर देने वाला है, निस्वार्थ है, सब कुछ लुटाने वाला है, सब कुछ देने वाला है, संसार से सहज वैराग्य कराने वाला है, सहज आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कराने वाला है, वो सब कुछ कराने वाला है, जो श्रीमत है उस पर चलाने वाला है, सहज मोहब्बत से प्यार से। और एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो, एक सेकंड। और संसार के प्यार में एक सेकंड भी अगर खो गए तो अनेक दुख न चाहते हुए भी सामने आ जाते, पूरा घेर लेते हो और छोड़ते नहीं सारी उम्र भर। ऐसा पीछे पड़ जाते हैं। तो ये प्यार ऐसा है कि सब कुछ संसार को भुला देता है, देह को भुला देता है, मित्र संबंधी व्यक्ति जो भी स्वार्थ का जो प्यार है उसको भुला देता है, ऐसा ये प्यार है। तो सुख के झूले में झूलने लगे हो। फिर बाबा ने भाग्य की बात कही कि बाबा साधारण आत्माओं से मिलता है, क्योंकि वो खुद साधारण तन में आता है, राजा रानी के तन में नहीं आता, धर्मात्मा महान आत्मा के तन में नहीं आता, जो साधारण है उसके तन में आता है। अगर किसी और के तन में आता, अगर उसने कहता कि मैं इस सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो भी मुश्किल होती है। ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता ये भी है कि जैसे वो जय कृष्णमूर्ति का दिखाया हुआ है, एनी बेसेंट सुना है नाम, एनी बेसेंट थी एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको एक साक्षात्कार हुआ कि बुद्ध की आत्मा आने वाली है। उस आत्मा के लिए उसका नाम होगा मैत्रेयी, बुद्ध की आत्मा पुनः जन्म लेने वाली है, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि 250 2500 वर्ष के बाद मैं फिर आऊंगा, मेरा नाम मैत्रेयी होगा। तो उसको साक्षात्कार हुआ कि बुद्ध की आत्मा उससे कह रही है कि मेरे लिए एक शरीर ढूंढो, मैं ऐसे तन में आना चाहती हूं कि जो कि बचपन से ही अशरीरी है, और जो देह और संसार से उसे कोई लेना देने नहीं, ऐसी कोई महान आत्मा होगी उसका चयन तुम करो, मैं उस शरीर में आना चाहता हूं। तो वो एनी बेसेंट और उसके सारे शिष्य ढूंढने लग गए कि कौन वो शरीर है, कौन सा वो व्यक्ति है कि जिसके चुनाव किया जाए, क्योंकि उसको कहा गया था, ये आदेश था कि ढूंढो। तो वो ढूंढने लगे ढूंढने लगे ढूंढने लगे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा कि जो ऐसा खड़ा था, एक बच्चा, वो था जय कृष्णमूर्ति। इस युग का सबसे, मतलब सबसे बड़ा विचारक जिसको कहा जा सकता है, उसके ओरिजिनल थॉट्स है, वो जब बोलता है और उसको सुनो तो ऐसा लगता है बस यही सत्य है, इतना विस्तार करता है वो, बहुत उसके ऊंचे विचार है, बहुत ऊंचे विचार। तो वो उस बच्चे को देखते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा खेल रहा है, लोग दूसरे बच्चे उसके ऊपर पानी फेंक रहे, उसको कोई खबर ही नहीं है, एकदम अशरीरी अवस्था में है। तो उस बच्चे को सिलेक्ट करते हैं कि यही वो बच्चा है कि जिसके अंदर बुद्ध की आत्मा आ सकती है, और उसको फिर बड़ा करते हैं, वो देखते हैं उसमें विलक्षण गुण है, जैसे संसार का उसको कोई भान ही नहीं है, अशरीरी जैसे वो अवस्था है। तो वो कहते हैं यही वो आत्मा है, उसको बड़ा करते हैं, फिर लंदन में लेके जाते हैं उसको, जय कृष्णमूर्ति को, और बहुत बड़ी सभा का आयोजन करते हैं। अब बस तैयार हो, वो उस सभा के बीच में बुद्ध की आत्मा उसमें प्रवेश करने वाली होती है, जय कृष्णमूर्ति में। पर एंड टाइम पर इस जय कृष्णमूर्ति का अहंकार जागृत हो जाता है, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या होती कि उसकी आत्मा जब आएगी तो तुम्हारे विचार कुछ नहीं रहेंगे, वो जो आत्मा कराएगी उसी को करना पड़ेगा, तुम्हें अपने विचारों का बलिदान करना पड़ेगा, अपनी भावना, अपना अहम, अपने विचार, अपने संकल्प, वो कुछ नहीं चलेगा। फिर वो आत्मा तुम्हारे शरीर में आएगी और वो आत्मा चलाएगी, सब कुछ वो आत्मा करेगी, नाम भी होगा तो उस आत्मा का होगा, नाम तुम्हारा नहीं होगा, जो महान कार्य करेगी। तो वहां उसका अहंकार जागृत होगा, इतने सारे लोग आए हुए हैं, लंदन में दिखाया हुआ है, पूरी सभा है, और वो कहता है कि मैं नहीं आने दूंगा, मैं तैयार नहीं हूं इस बात के लिए, और पूरा फ्लॉप हो जाता है शो। उसके बाद में दिखाया थियोसॉफिकल सोसाइटी, बंदी हो गई जैसे ये कुछ सालों के बाद। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। अगर उसको ये कहना था कि मेरा क्या, मेरी क्या महिमा होगी, महिमा तो उसकी होगी, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया होता तो, कि नहीं मैं नहीं अलाउड करता हूं, जैसे ये इधर हुआ ना, ये एकमात्र उदाहरण है पूरी इतिहास में 5000 साल का जय कृष्णमूर्ति का, कि जिसने रिजेक्ट कर दिया, बड़े इसके ऊपर किताबें वगैरह लिखी हुई है। तो वो कहता है मैं नहीं आने दूंगा क्योंकि मेरी महिमा ही नहीं होगी फिर। तो यहां इसने क्या किया है, ब्रह्मा शिव बाबा उस तन में प्रवेश किया, परंतु उसने अपने अहंकार को सब कुछ समर्पित कर दिया। ये सबसे बड़ा समर्पण है कि जो महिमा होगी शिव बाबा करा रहा है, जो कार्य हो रहा है उसका कार्य है। उसको गालियां खानी पड़ी जो कभी लौकिक में कहीं नहीं थी, वो सब कुछ उसको करना पड़ा, परंतु उसने समर्पण कर दिया अपने आप को। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, इसके लिए भी बाबा ने इसको चुना। अगर वो कोई कहते हैं ना भाई हमारे तन में क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके तन में क्यों नहीं आए, हाँ इसको हमको हमको क्यों नहीं, तो क्या तुम्हारे तन में आएगा क्या? वो मनोरिंद्र दादी को पूछा था किसी ने कि भाई ये इसके तन में क्यों आता है, तो दादी ने सीधा पूछा था क्या तुम्हारे तन में आता था? हमारे तन में आता तो भी फिर हमारी इच्छा रहती कि हमारी महिमा हो जाए, ये महिमा हो जाए इसका त्याग करना है, तो ही वो आएगा। तो ये ब्रह्मा ने किया, ये उसका बड़ा काम है। तो बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, साधारण आत्माएं उसे पसंद है और भाग्य की लकीर उसने दे दी है, और एक नहीं पूरा भंडारा दे दिया है, एक कमरा दो कमरा नहीं सब कुछ दे दिया है, इसके लिए मांगो नहीं, दे दिया, दे दो नहीं दे दिया। अभी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ मांगना है तो पहले ये वाक्य लाना, बाबा शक्ति दे दो, ये दे दो, दे दो नहीं दे दिया। कुछ कह रहे थे
चेक कर
है या नहीं? ओम शांति।